नम यस्मा सदोक्षजा, ऐसा अधोक्षज भी भगवान सब लोगों के इंद्रियों का विषय बन गया, ऐसे उस पर ब्रह्म को कभी ब्रह्म को अंगुली निर्दिष्ट नहीं होता है। अहम ब्रह्मास्तु नहीं बोल सकते हो वेदांत दृष्टि से, पर अयम ब्रह्म अथवा इदम ब्रह्म ये नहीं बोला जा सकता है। यद्यपि ब्रह्म शब्द नपुंसक लिंग होने से इदम ब्रह्म बोला जाता है, पर वारे ब्रज की महिमा हमारे युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में श्री ठाकुर जी पधारे तो महाराज वो सभी लोगों से बताते हुए नारद जी ने कहा वो ब्रह्म कहाँ है कि सवा अयम ब्रह्म महद ब्रह्मज्ञम। जिनको बड़े बड़े महापुरुष ढूंढा करते हैं महद भी ब्रह्मज्ञम ब्रह्म सवा अयम कृष्ण। महाराज ब्रह्म को अयम शब्द का प्रयोग कर दिया, अयम इति कृष्णानुसारी कृष्ण को उद्देश्य करके और ब्रह्मत्व का समारोह किया जा रहा है। तो हमारे वेदांत में यद्यपि सर्वं खलु इदं ब्रह्म बोला जाए, पर हमारा भागवत तो अयम ब्रह्म का रहा है। हमारा नंद नंदन यशोदा नंदन हमारा वृंदावन चंद्र जो श्री कृष्ण है वो ही इस भागवत का प्रधान विषय है। क्यों कि अन्य जितने भी देवताएं उनका अंगत्वेन वर्णन किया आदित्यादि मतस्थ अंगे उपपत्ते ही। वेदांत सूत्र के चौथे अध्याय में बताया कि जितने भी देवता हैं सूर्य उपासित हो दाचम धेनु उपासित हो वो श्री कृष्ण के अंग हैं। इसलिए उन अंग को न लेकर यथा सरोर मूल निषेचने नो कृपयंत तत् कन्द भुजो प्रशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वारहण मत्स्यते। जिस प्रकार वृक्ष की जल में पानी देने से सभी वृक्ष की शाखाओं में और पत्रों में पानी पहुंच जाता है, उस प्रकार आकाशा पतितम तोयम यथा गच्छत सागरम सर्वदैव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छ। महाराज ये तो केशव गौड़ी मठ ही है, सबको केशव में जाना है, चाहे नाली का पानी हो चाहे वो नदी का पानी हो सबको अंत में सागर में जाना है। इसीलिए सर्वदेव का किया हुआ प्रणाम जब केशव को जाता है तो हम साक्षात केशव गौड़ी मठ में बैठकर केशव को ही क्यों प्रणाम न करें। सज्जनों केशव शब्द का क्या अर्थ है? वास्तविक विचार किया जाए तो लीला में यदि प्रवेश करें तो लीला में हमारी स्वामिनी जी के जो केश हैं बाल हैं उनको कई तक के संगा लेकर के ठाकुर जी चाड़ रहे हैं। केशान वयते असौ केशव। श्री ठाकुर जी स्वामिनी जी के केशों को अपने हाथ से वयन कर रहे हैं। जो श्री स्वामिनी जी के इतने अधीन हैं, राधे तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीन लोक तारन तरन तो तेरे आधी। और भी यदि विचार किया जाए केशव के अर्थ पर तो हम यह सोचते हैं कि कलयुग में कित भगवान का वर्णन हो तो कृष्ण वर्णम तिथा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्राय यजंत ही सुमेधता। सुस्तु मेधा ये शांति सुमेध कहा, ऐसे सुंदर वाले क्या यज्ञ करते हैं? और कोई घी की आहुति वाला यज्ञ कलयुग में इतना प्रशस्त नहीं है। इसलिए भागवतकार भगवान बोले कि यज्ञ संकीर्तन प्राय ही। ये भगवान नाम संकीर्तन का जो यज्ञ है जो कि हमारे नित्यानंद महाप्रभु जी इनके प्रधान आचार्य हैं। कीर्तन के आचार्य नित्यानंद महाप्रभु वो ही कलयुग के कृष्ण वर्णम और कृषा अकृष्णम और सांगो पांगास्त्र पार्षदम अंग माने हृदय और उपांग माने श्री राधा जी और अस्त्र माने सुदर्शन और पार्षद माने भक्त, इन सबों को साथ लेकर हमारे श्री नित्यानंद महाप्रभु यहाँ पर आ गए और उन्होंने आकर के इस केशव के गुणगान को ही प्रारंभ किया। कलौ केशव कीर्तनाथ, तो एकाकारम कलिम दृष्टा में जो आकार शब्द है वो तो गुणवाचक है। एक आकार माने गुण, यस्य इस कली का एक गुण है कि ये दोषों को न पकड़कर गुणों को पकड़ लेता है। हरि का सुयज्ञ सुमेध सब बड़े बड़े मेधावी जो हैं वो सब झंझटों को छोड़ करके और हरि का नाम संकीर्तन करते हैं। एकादश में एक वाक्य आया, आत्मैव यात्मनो गोप्ता, आत्मैव यात्मनो गोप्ता निर्विद्येत यथा यदा खिला। यदि तुम्हारा सभी वस्तुओं से सुदृढ़ वैराग्य हो जाए तो समझ लो तुम्हारी आत्मा ने तुम्हारी आत्मा की रक्षा कर दी। नहीं तो वह न प्रवंत से आत्मा, तो आत्मघाती हो जाओगे तुम। आत्मा ने तुम पर रक्षा कब करी, जब सभी से वैराग्य करके और फिर अप्रमत्त इदम पश्चेत ग्रस्तम कालाहिना जगत, ये कालरूपी सर्प संपूर्ण जगत को एक दिन खा जाएगा। इसलिए जैसे भी प्रत्येक क्षण को हम संस्कार सकल करें और उस केशव के नाम संकीर्तन में अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को क्यों समर्पण करें, यही तो श्रीमद् भागवत का विषय है। सज्जनों, अब इसमें इसी समझने की बात है, जब कहा कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान हरि ईश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। जब कहा कि भगवान श्रोतव्य, अब भगवान को क्या सुने, भगवान को देखने की वस्तु है, भगवान सुदर्शनीय न तो श्रवणीय, भगवान को देखने की चीज है उसे देखा जा सकता है, उसे सुना कैसे जा सकता है। तो कहा भगवान अने भगवत लीला एक एक हो, भगवान और भगवान की लीला अर्थात भगवान का इसमें वर्णन है, अर्थात भगवत लीलाओं का इसमें प्रतिपाद्यत्वेन वर्णन है। वो लीला तृतीय स्कंध में सर्ग लीला, चौथे स्कंध में विसर्ग लीला, पांचवें स्कंध में स्थान लीला, छठे स्कंध में पुष्टि लीला, सातवें स्कंध में ऊटी लीला, आठवें स्कंध में मनवंतर लीला और नवम स्कंध में ईशानुकथा लीला। अब दसवें स्कंध से शिवल्लभाचार्य जी और श्रीधराचार्य जी का मतभेद हो गया। श्रीधराचार्य जी ने दसम स्कंध को निरोध लीला कह करके बोला, ओ आश्रय लीला बताया, और शिवल्लभाचार्य जी ने इसको निरोध लीला बताया। निरोध का अर्थ मरना, ऐसा श्रीधराचार्य जी मानने लगे। जब श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज बोले निरोधो ज्ञान शयनम आत्मन सहशक्ति भी, आत्मन श्री कृष्ण से शक्ति भी ब्रज गोपांगना भी सह शयनम रास लीला करणम नाम निरोध। भगवान श्री कृष्ण ने जो वृंदावन में रास लीला की उस रास लीला का नाम ही निरोध है। जो मनुष्यों का मन सबसे हट करके एक वस्तु में लग जाता है उसका नाम है नितराम रोधा निरोधा। तो सज्जनों, भगवान की जो सर्ग सर्गा निरोध लीला, एकादश स्कंध में मुक्ति लीला और द्वादश स्कंध में आश्रय लीला का वर्णन है। यद्यपि ये भगवान श्रोतव्य का अर्थ है, भगवतो लीला श्रोतव्या, भगवता लीला कीर्तनीया, भगवता लीला स्मर्तव्या, श्रवण कीर्तन और स्मरण ये तीन ही बताए नवदा भक्ति में। या नवदा भक्ति की छह भक्तियों को तोड़ दिया, नवदा भक्ति की तीन भक्ति पकड़ी, श्रोतव्य कीर्तितव्य और स्मर्तव्य। क्या कारण है, श्रोतव्य किससे सुना जाता है, कान से ज्ञानेन्द्रिय, और कीर्तन किससे किया जाता है, वो कर्मेंद्रिय है, एक ज्ञानेन्द्रिय लिया और एक कर्मेंद्रिय लिया, और तीसरा का स्मर्तव्य। स्मर्तव्य मन उभय इंद्रिय, वो मन का काम है, उभयेन्द्रिय मन का स्मरण ले लिया और कर्मेन्द्रिय का कीर्तन ले लिया और श्रवणेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय का श्रवण ले लिया। तो बल्लभाचार्य जी महाराज बोले नहीं, एक भाव और भी है। कहा श्रोतव्य सत्य वक्तरी श्रोतव्य, कोई महापुरुष वक्ता आ जाए तो सुन लो, उस समय जप मत करो। ये जप करना यहाँ श्रवण के आगे उचित नहीं है, और यहाँ तक मुक्ति और भक्ति की बातें हैं यहाँ तो अधिकारी पर निर्भर है। यहाँ तो जहाँ तुम सुनना शुरू किया कि यस्यां वै श्रूयमाणायां तस्मै परम पुरुषे भक्ति रूपते, अंत की बात तो जाने दो। श्रूयमाणायां इत्यत्र वर्तमाने सानस्य श्रूयते इति श्रूयमाणा, या श्रूयते सा श्रूयमाणा, श्रूयमाणा में वर्तमान में सानस हो रहा है। श्रूयमाणायां यस्यां जिसमें श्रवण के काल में ही वस्त्र उत्पद्यते, ये वर्तमान का सानस ये बता रहा है। आज कथा सुनो और कल भक्ति हो तो बात नहीं है, अभी सुनो और अभी भक्ति आ जाए। तो इस प्रकार सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन रात रस के चूड़ामणि जो के हमारे सज्जनों के ऊपर कृपा करने के लिए निष्णाम मित्रे यथार्थाय व्यक्तिर भगवतो नृप, भगवान की जो अभिव्यक्ति है वो उपनिषदों के तत्व में जो इंद्रियों का विषय ब्रह्म नहीं हो सकता है इसका बाध करने के लिए यहाँ वेदांत सार श्रीमद भागवत में ब्रह्म को इंद्रियों का विषय बनाया। और तो वह विषय कैसे है तो भगवाचार्य जी कहते हैं स्व सामर्थ्य से वह इंद्रियों का अभिषय है और वह अपनी कृपा से भक्तों के इंद्रियों का विषय बन जाता है। इसलिए भगवान और भगवान की दशविध लीला और दशविध लीलाओं में प्रधान लीला आश्रय लीला दशमस्त विशुद्ध्यर्थम नवानाम यह लक्षणम वर्णयन महात्मा न हो श्रुतेनार्थेन चंजसा। श्रुतेना का अर्थ है वैदिक वेदों का अर्थ स्तुतियों में है, श्रुतेना करते स्तुत्यादि विभागे, और अर्थेना का अर्थ है इतिहासादि में, इतिहास और स्तुति स्तुति दो ही तो भागे भागवत, इन दोनों भाग से महात्मा वर्णन करते हैं। वो श्रीमद् भागवत जिनको हम कहते भगवता प्रोक्तम भागवतम अथवा भगवान एव भागवतम, स्वार्थ ज्ञान करेंगे भगवान एव भागवतम, भागवत भगवान को दो को मानते हो क्योंकि भक्त भक्ति भगवंत गुरु ये तो चारों ही एक चीज है। इसलिए कहीं कहीं सब व्यपदेश भक्ति और भगवान को ऐसे करके भी बोला है। अब पराशांति के दो श्लोक कहकर मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। एकादश में लिखा है इस समय का जीव कुछ भी कर रहा है पर अशांति से पीड़ित है। मानव को पराशांति कब मिले जब उसकी इच्छाएं हट जाए। जब तक मानव के मानस में ये इच्छाएं इस मन को झजोरा करती हैं, करती रहेंगी तब तक उसे जीवन में शांति उपलब्ध नहीं हो सकती। इच्छाओं को हटाना ये हमारे केशव प्रभु के चरणों की कृपा हो तब है। इसलिए केशव का दूसरा अर्थ है कश्च ईशश्च इति केशव, कश्च ब्रह्मा ईशश्च शिवा ईशो शिवा को ब्रह्मा, तो कश्च ब्रह्मा ईशा शिवा इति केशव तयोः वम अमृतम आनंदम यस्मात् स केशव। महाराज जो ब्रह्मा को भी आनंद देता है बछड़ा चुरा करके ब्रह्मा को भी रुलाता है, और ब्रह्मा को भी उत्थाय उत्थाय कृष्णस्य पादयो पतन, और मुदस्त्र भी अपने नेत्रों के अश्रुओं से ठाकुर जी केशव जी का चरणा विजय कर रहा है। ये महाराज ब्रह्मा की दशा है। और जब बाणासुर के यहाँ शंकर जी लड़े तो शंकर जी के जितने भी अस्त्र थे उनके प्रत्यस्त्रों से शंकर जी को बिल्कुल शांत कर दिया और एक जर्मणा अस्त्र छोड़ा। तो जर्मणा के अस्त्र जानते हैं आप क्या है, यानी मोड़ा फटने लगा जर्मनी अंग्रेज तो शिव जी युद्ध करना तो भूल गए और मोड़ा फाड़ के जमाई लेने लगी और युद्ध से भाग गए। तो महाराज संतर के कहने से उनके पार्षद को जान से नहीं मारा और कहा चार हो जाओ छोड़ करके मैं आपका दास छोड़ देता हूँ। तो ब्रकासुर के रूप में भी शिव की आपने रक्षा की है। अनंत अनंत जब मैं राक्षस के कुआ में अमृत पीने के प्रसंग में भी भ्रष्ट संकल्प हो गए तो आपने शिव को भी आनंद दिया। तो जो ब्रह्मा और शिव को भी आनंद दे रहा है ऐसे केशव के चरण को केशव गौरिया मठ में रहकर यदि केशव के गुणगान में अपने जीवन के चल जाए तो हम धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य है। इस प्रकार केशा नुभवो विरक्ति रण्यत्र चैषो काल प्रपद्यमानस्य यथास्नतस्यु तुष्टि पुष्टि क्षुदपायोनुघातम। तात्पर्य थोड़े न कहूंगा कि मानव के जीवन में जब वो हो दो व्रत आ जाए, कभी एकादशी व्रत हो और दूसरे दिन वामन द्वादशी आ जाए, तो दो व्रत के करने के बाद जब त्रयोदशी में पारणा करने को जाता है तो उसे बड़ी भूख लगती है कि कैसे भी थाली आ जाए और थाली में से वो ग्रास मुख में जाए। तो श्री ठाकुर जी कहते हैं कि जो ही एक ग्रास मोड़े में गया उसके साथ तीन चीज आई, तुष्टि पुष्टि और क्षुदपाय। तुष्टि पहला कोर खाते ही पेट नहीं भरा, परंतु थोड़ा कुछ आश्वासन मिला कि चलो हमारी क्षुधा शांत होगी। तो पुष्टि और उस कोर के साथ ही थोड़ी पुष्टि जो असमर्थता थी शरीर में वो भी मिटने लगी और फिर क्षुधा पाए उतने अंश की क्षुधा का भी नाश हुआ। तो महाराज पुष्टि का नाम भक्ति है और पुष्टि का नाम परेशानुभव है और विरक्ति का नाम क्षुदपाय है। ये परस्पर सामंजस्य है एक एक से। तो इत्यच्युतां भजतो नृत्या भक्तर विरक्ति भगवत प्रबोधः भवन्ति वै भागवतस्य नित्यं ततः परां शान्तिमुपैति साक्षात्। सज्जनों यदि शांति लेनी है तो अपनी हृदय से इच्छाओं को निकाल दो, भगवान की इच्छा के आधार पर जो जीते हैं उसी संप्रदाय का नाम वैष्णव संप्रदाय है। जो अपनी इच्छाओं का कभी अनुसरण नहीं करते और भगवत इच्छा के ऊपर अपने जीवन को ढाल देते हैं, अपने समस्त भविष्य की चिंताओं का परित्याग करते हैं, वर्तमान में मोह और भूत का शोक और भविष्य की चिंताओं का नाश करने वाला कोई पदार्थ है तो केशव भगवान के चरणारविंद की विमल भक्ति। इसलिए उस विमल भक्ति को जो बार बार जीवन में आवृत्ति करता है वो भागवत बन जाता है और जो भागवत बन जाता है उसको जीवन में परा शांति वो मिलती है। इसलिए परा शांति लेने के लिए केशव भगवान की नित्य भक्ति करो। श्री गिरिराज प्राप्त माति देव व्यास की चरम उत्कृष्टतम रचना है। हम जिन दृष्टों से देखे वही पत्रकार शिव भागवत में उपलब्ध मिलेगा। चाहे दर्शन की किसी विधा को देखें, चाहे भक्ति की किसी विधा को देखें, चाहे साधन रूप में देखें, साधु रूप में देखें, प्रकाश चतुर्थ के रूप में देखें, अपमोक्ष के रूप में देखें, भक्ति के रूप में देखें, कोई भी प्रकार जिस तरह देखना चाहेंगे वो इसकी भागवत में है। रह जाता है कि मुख्य करना व्यक्ति विवेक के ऊपर केवल का प्रतिपाद क्या है निश्चय करना। यहाँ पर मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है कि श्रीमद भागवत का प्रतिपाद क्या बहुत ही संक्षेप में दो तीन मिनट के अंदर ही अपना विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हम किसी भी ग्रंथ के प्रतिपाद निश्चय करने के उसके नाम रूप और विषय का थोड़ा विचार करना पड़ेगा।
जब तक नाम रूप और दर्शन का विचार नहीं करेंगे तब तक उसका जहाँ तक श्रीमद् भागवत के नाम के विषय में बात है सभी परिभाषा प्रस्तुत करती है भगवता पुरुषम भागवतम जो भगवान के द्वारा कहा गया। कुछ लोग कहते हैं भगवत ध्यान पुरुषम भागवतम, कुछ विद्वानों का कहना है भगवत जी पुरुषम भागवतम जो भगवान के द्वारा कही गई भगवान नारायण के द्वारा जो दो भगवानों के द्वारा कही गई नारायण और ब्रह्मा जी के द्वारा या भगवती पुरुषोत्तम बहुत से भगवानों के द्वारा कही गई बहुत से भगवानों में देवर्षि नारद जी भगवान है उनके लिए भगवान शब्द का स्थान देश मिलाए अत्यंत बदलो ब्रह्मा दुमारो हरि अभाजन भगवान बालायण व्यास जी महाराज जी भगवान तो अनेक भगवानों के द्वारा कही गई इसलिए ग्रंथ का नाम भागवत संसार में प्रसिद्ध हुआ। कुछ विद्वानों का कहना भगवान पुरुष के लिए संत भागवतम जिसमें भगवान का गुणगान किया जाए उस ग्रंथ का नाम भागवत यही प्रभाता दर्शन करते भगवान का गुणगान आरंभ से लेकर हम लोग करते। कुछ व्यक्तियों का कहना है कि जिसमें भक्त भक्ति भगवान तीनों का सामुदायिक वर्ण मिलता है उसे भागवत कहते हैं तो श्रीमद् भागवत में भक्त भक्ति और भगवान तीनों का वर्णन भी समुचित रूप में पर्याप्त रूप में उपलब्ध। कुछ विद्वानों की परिभाषा है भागवता नाम एकदम भागवतम जिसमें भागवत भक्तों का वर्णन किया जाए उसी का नाम भागवत है। कुछ विद्वानों की परिभाषा है भागवते एकदम भागवतम जो भक्तों के लिए बनाया गया उसका नाम भागवत। तो उसके नाम की विचार करने पर एक बात समझ में आती है कि श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय भक्त भक्ति भगवान हो सकता है। अब इसके रूप पर विचार करें तो यहाँ पर सभी जब समुदाय से उपस्थित है ज्ञान चाहिए स्वयं प्रभु ने अपने मुखार्थ से कहा है श्री उठाए प्रदस्तो तो श्रीमद् भागवत में स्वयं स्वरूप के विद्यमान तो श्रीमद् भागवत भगवत स्वरूप भगवान के मुखार्थ से वर्णक है भगवान का साक्षात स्वरूप है। हाँ अभी एक बात जरूर सोचनी पड़ेगी प्रतिपाद्य क्या है, यदि कोई बात हम अपने मुंह से स्वयं कहें तो क्या इसका प्रतिपाद्य हम बन जाएंगे। तो यदि श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य जैसा सभी कहते हैं भगवान है तो जो भगवान के मुखार्थ से कहा गया ग्रंथ उसका प्रतिपाद्य भगवान ही माना गया मान लिया जाए कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति में भारतीय साहित्य में संस्कृत साहित्य में सभी ग्रंथों का प्रतिपाद्य भगवान है तो इस रूप से यदि हम माने भागवत का प्रतिपाद्य भगवान है तो कोई आपत्ति की बात नहीं। किंतु वस्तुता भागवत का प्रतिपाद्य क्या होना चाहिए यदि विस्तृत दृष्टिकोण से देखें तो मेरे विचार में जितनी भी अच्छी चीजें वो भागवत में सभी वर्णित हैं और सभी प्रतिपाद अब रह जाता है केवल मेरा विचार। तो मेरा विचार ऐसा है मैंने प्रथम स्कंद से लेकर द्वादश स्कंद तक देखा और जिसको भी विचार करके देखा उसी के आगे मुझे भागवत विशेषण अवश्य मिला। सुखदेव जी महाराज के विषय में महाभागवत शब्द का उल्लेख है, राजा परीक्षक के विषय में देखा तो महाभागवत कृपा है, उद्धव जी महाराज के लिए देखा तत्रोद्धवम भागवतम दर्शा उद्धव जी महाराज भागवत दिखाई दिए, प्रहलाद जी महाराज के लिए देखा महाभागवत उतरा उनके लिए भी। तो मेरा विचार तो ऐसा है श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य भगवान नहीं श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य भागवत है भक्त है। ये भक्त का वैशिष्ट भगवान ने स्वयं अपने मुखार्थ के देखिए अस्वीकार किया है राजा अम्बरीश महाराज के प्रसंग में अहम भक्त पराधीना यह स्वतंत्र बद्या सागर ग्रस्त भक्त ही भक्त जनपति। तो भगवान का भी प्रतिपाद्य क्या है, भगवान का भी आराध्य क्या है, भगवान का प्रतिपाद्य भी भक्त है भगवान का आराध्य भी भक्त है। श्रीमद् भगवद्गीता में ये बात कही है यदा यदा धर्म से अगला भगवत भारत आपके स्थान बदलने से तदात्मान मुक्तियां में हम परित्राणाय साधु नाम बिनाता है जगस्वताम धर्म संस्थापनाता है संभवाम हुए संत गौ साधु को भागवत को बात किए तो श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य है भागवत बनाना, जीवन भर भागवत पढ़ते रहो और उसके बाद अपने को भागवत नहीं पढ़ा सके जीवन भर का पढ़ना व्यर्थ, जीवन भर श्रीमद् भागवत की कथा बांटते रहे और अपने के लिए भागवत न बना सके वो कथा बांटना व्यर्थ, जीवन भर भागवत सुनते रहे और सुनने के बाद अपने को भागवत नहीं बना सके तो भागवत का सुनना भी व्यर्थ। तो भागवत का यदि कोई प्रतिपाद्य है तो एकमात्र यह है कि प्राणी के लिए भागवत बना। हाँ एक बार जरूर प्रश्न होता है कि भागवत किसे कहते हैं, तो भागवत किसे कहते हैं, बहुत संक्षिप्त में इसका उल्लेख कर रहा हूं। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में सर्वभूते प्रत्येक भगवत भावात्मना भूतान भगवत की आत्मा के भागवत जो संसार के सभी चीजों में भगवान के स्वरूप को देखता है वह भागवत उत्तम। हाँ ये बात भी है कि सभी भागवत उत्तम नहीं बन सकते, तो सभी उत्तम नहीं बन सकते तो मध्यम भागवत तो बन ही सकते हैं और मध्यम भागवत शब्द का भी उल्लेख किसी श्लोक के नीचे किया है, ईश्वरे सदत ही रेतु बाल एक दुसत्व क्या प्रेम मैत्री दुर्गो इच्छा यह करो सबक, चाहे संसार को भगवत स्वरूप में देखो तो उत्तम भागवत बन सकोगे और यदि सारे संसार को भगवत स्वरूप में देखने की क्षमता अभी नहीं है तो कम से कम इस संसार को क्या रूप में देखो, ईश्वर रूप में देखो, ईश्वर के भक्त रूप में देखो, अज्ञानी के रूप में देखो। और भाई संसार है जो शत्रु भी हो सकता है तो ईश्वर तीले तू बालके से तो सब तो क्या संसार को क्या रूप में देखो और संसार में क्या तरह का व्यवहार करो, ईश्वर के प्रति प्रेम, भगवत भक्तों के प्रति मित्रता, अज्ञानियों के ऊपर कृपा और जो अपने देशभाव रखने वाले ऐसे व्यक्तियों की उपेक्षा। अपने मैं इस वक्तव्य को तुरंत पूर्ण कर रहा हूँ, मेरा एक ही मत है कि श्रीमद् भागवत का यदि कोई प्रतिपाद्य विषय है तो प्राणी के लिए भागवत बनाना, यदि वो प्राणी भागवत के पढ़ने से सुनने से अनुशीलन करने से निरंतर अभ्यास करने के बाद भी यदि वो भागवत बन जाता है तो क्या भक्ति हो क्या मुक्ति हो क्या ईश्वर हो क्या ब्रह्म उसके सामने नाचने लगे।
वैष्णवजन हम लोगों ने श्री जन्माष्टमी महोत्सव आरंभ किया था, आज वह पद पूर्ण रूप से सफल हुआ। हमारी इच्छा थी कि यहाँ के दिग्गजनों के विचार श्रीमद् भागवत के संबंध में सुनो, मुझे अत्यंत आनंद हुआ। मैं आप लोगों का रेडी रहूंगा और रेडी अभी भी, विशेष करके श्रीमद् भागवत का विषय कृष्ण प्रेम ये सभी आचार्यों ने इसको ग्रहण किया। कृष्ण तो प्रतिपाद्य विषय है ही किंतु यहाँ तक कैवल्यिक प्रयोजनों का तात्पर्य हमने देखा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी सनातन गोस्वामी जी इत्यादि ने विचार किया, वहां पर कैवल्य कृष्ण प्रेम से कहा क्योंकि हरी लीला तथा प्राता मृत जो उसके ऊपर वाले श्लोक में आया है पर वेदांत सार श्रीमद् भागवत को भी बतलाया गया और कैवल्य प्रयोजन उसके ऊपर नहीं हरी लीला तथा प्राता मृत को उसको बतलाया, भगवान की लीला कथा ही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य है और यही अमृत है और इसी का आस्वादन करने के लिए ही कई बल्ले प्रेम जैसे हमारे पंडित जी ने बताया उन्होंने कहा मुक्ति तो कदापि इसको ग्रहण नहीं किया जाता क्योंकि मुक्ति का श्रीमद् भागवत में जगह जगह पर अनादर देखा जाता है। ज्ञाने प्रयासम उदपाश्य स्थिति भक्ति निगच्यते विभो, हजारों जगहों में यमानम न गृहणन्ति बिना मत्सेवनम जना,
अत्यंत निर्जरीय
निर्जरीय थी। और अंत में श्रीमद् भागवत के इसमें बतलाया गया भवे भवे यथा भक्ति पादयो समझ तथा कुरुष्व देवेश नाथत्तम यही पर उन्होंने समाप्त कर दिया। हमारी समझ से जो लीला कथा भी है उसमें भगवान की बहुत प्रकार की लीला कथाएं, किंतु श्रीमद् भागवत ने जो लीला कथा में जो रासलीला का वर्णन किया गया जिसमें गोपियों के भी चरणों का कृष्ण ने आश्रय किया और उनके लिए कहा न पारे हम निर्वत्य संगी, जिसमें कृष्ण उनके सिर नहीं बन गए और कभी भी उनके ऋण से उसे नहीं। ऐसी जो लीला कथाएं विशेष करके उद्धव संवाद संदेश में गोपियों की वह विरह वेदना इत्यादि देखा, हम तो समझते हैं कि वह जो विरह की लीला है जिसको उद्धव जी स्वयं वहां गए, जो कृष्ण को जाते समय में मथुरा से आते समय उन्होंने सोचा ये कृष्ण तो मुझे भेज रहे हैं किंतु मैं कैसे वृंदावन में रह सकूंगा कृष्ण के लिए। कृष्ण ने उनसे मन ही मन कहा था कि तुम जाओ तो पहले, हम समझते हैं कि वहीं पर मैं सबसे अधिक तुम हमको पाओ, हम यहाँ अंतिम रूप से मथुरा इत्यादि हैं किंतु पूर्ण रूप से तो मैं वहीं पर हूँ। वहां पर जब उन्होंने जाकर के गोपियों को देखा उनके भावों को देखा तो कैसे कैसे सुंदर उन्होंने अपने विचार करते थे, आसाम हो चरण रेंज साम हम, यही तो श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य है। वंदे नंद प्रभु स्त्री नाम सागरे अपृष्णता, कैसी सुंदरता। बल्कि गोपियों को तो कहा कि ये सब बतलाया और उद्धव जी ने ये भी बतलाया कि लक्ष्मी जी हैं कृष्ण की कुछ कृपा पाई, द्वारका की महिषिया भी उनको कुछ कृपा पाई, किंतु कृष्ण जिनके गले में हाथ देकर आज तक कृष्ण ने किसी के लिए ये बात नहीं युष्मत भागवत की लीला कथा में भी इन गोपियों का चरित्र जिसके लिए कृष्ण अवतीर्ण हुए थे, हम समझते हैं कि धर्म की रक्षा असुरों का विनाश इत्यादि कार्य तो अपने अंशों के द्वारा कलाओं के द्वारा विभूतियों के द्वारा भी लेकर आते हैं। कृष्ण का अवतार इसलिए उनका तो प्रधान रूप से कृष्ण गोपियों का प्रेम आस्वादन करना और उसको जदा सदा जैसे अधिकारी है उनको दे देना है, बस प्रेम दान और प्रेम का आस्वादन करना, राधा प्रेम राधा प्रेम सब इससे बढ़कर है और कोई प्रेम नहीं। उसके कारण महाप्रभु जी ने रामानंद संवाद में राधा जी की महिमा अपूर्त कर, इसलिए ये लीला कथा में जो लीला कथा मृत है वो राधिका जी के साथ में रात में और विरह वेदना में जो भक्त इत्यादि ने जो अनुभव किया और अपने को कृतार्थ माना, हम समझते हैं लीला कथा करता वही कई बल्य केवल मात्र विशुद्ध प्रेम जो है जिसको आप लोगों ने प्रतिपादन किया यही श्रीमद् भागवत का प्रतिपादन। हमारे समझ से हमने अपने आचार्यों से गुरु बने प्रभु किया है, आज मैं आप लोगों का मैं बहुत ऋणी हूँ, हृदय प्रफुल्ल हो गया रोम रोम हमारा आनंदित हो गया। आप लोगों ने यहाँ पर यहाँ हमने सुना था कि कुछ लोग मुक्ति का को श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य थे, किंतु आप लोगों के मुख से ये सब सुन करके मैं अत्यंत कृतार्थ हो गया। मैं आप लोगों को बीच बीच में आवाहन करूंगा आप लोग कृपा करके आएंगे और ऐसी सुंदर कथा कृष्ण की कथाएं हमें सुना करके हम इसीलिए हम लोग छोड़ छाड़ करके पिछले हम आप लोगों के चरण में उपस्थित होगा, भोजन के लिए आप लोगों के घरों से माधुकरी और कानों से ऋषि अमृत का आस्वादन करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, इसलिए हम लोग आपसे खेल रही है।
और